प्रथम टिमोथी पौलुस मसीह यीशु का एक प्रेरित विश्वास में मेरे सच्चे पुत्र तीमुथी उसके लिए मैंने आपसे इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को यह आदेश देने का आग्रह किया है कि वे अब झूठे सिद्धांत न सिखाएं और न ही खुद को मिथकों और अंतहीन वंशावली के लिए समर्पित करें। इस आदेश का लक्ष्य प्रेम है जो शुद्ध हृदय और अच्छे विवेक और सच्चे विश्वास से आता है। कुछ लोग इनसे भटक गए और निरर्थक बातों पर उतर आए। संकलक की टिप्पणी, जो लोग भटक गए वे ईसाई थे जो स्पष्ट रूप से ईसा मसीह को छोड़कर यहूदी धर्म में लौट आए। टिप्पणी समाप्त करें। संकलक की टिप्पणी, वंशावली की जड़ें यहूदियों की संस्कृति में गहरी थीं। वे दाऊद के सिद्ध वंश के मसीहा की तलाश कर रहे थे जो इसराइल को दाऊद के राज्य की तरह एक शक्तिशाली सांसारिक राज्य के रूप में पुनर्स्थापित करेगा। ये वंशावली अभिलेख 70 में रोमनों द्वारा उनके मंदिर और यरूशलेम को नष्ट करने से नष्ट हो गए थे। इसलिए यह साबित करने का कोई तरीका नहीं है कि डेविड के वंश का एक और मसीहा है। टिप्पणी समाप्त करें। कानून और कानून तोड़ने वाले। कानून धर्मियों के लिए नहीं बल्कि कानून तोड़ने वालों और विद्रोहियों, अधर्मी और पापियों, अपवित्र और अधार्मिकों के लिए बनाया गया है। उन लोगों के लिए जो अपने माता पिता की हत्या करते हैं, हत्यारों के लिए, व्यभिचारियों और विकृतियों के लिए, दास व्यापारियों और झूठे और झूठी गवाही देने वालों के लिए, और जो कुछ भी उस ध्वनि सिद्धांत के विपरीत है जो धन्य भगवान के गौरवशाली सुसमाचार के अनुरूप है। मसीह यीशु पापियों को बचाने के लिए दुनिया में आए, जिनमें से मैं सबसे बुरा हूं। परंतु इसी कारण से मुझ पर दया की गई ताकि मुझ में सबसे बुरे पापियों में मसीह यीशु उन लोगों के लिए एक उदाहरण के रूप में अपना असीमित धैर्य प्रदर्शित कर सके जो उस पर विश्वास करेंगे और अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। मसीह को अस्वीकार करना। तीमुथियुस, मेरे बेटे, विश्वास और अच्छे विवेक को कायम रखते हुए अच्छी लड़ाई लड़ो। कुछ लोगों ने इन्हें अस्वीकार कर दिया है और इसलिए उन्होंने अपने विश्वास को नष्ट कर दिया है। उनमें से हाइमेनियस और अलेक्जेंडर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है ताकि उन्हें सिखाया जाए कि वे निंदा न करें। संकलक की टिप्पणी, जिन लोगों ने अपने विश्वास को नष्ट कर दिया है वे हैं जो मसीह के राज्य में रहने के बाद मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अस्वीकार करते हैं। इस प्रकार अब मसीह के शरीर में एक वफादार ईसाई नहीं है। टिप्पणी समाप्त करें। कार्य ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। मैं आग्रह करता हूं फिर सबसे पहले कि अनुरोध, प्रार्थना, मध्यस्थता और धन्यवाद सभी राजाओं और अधिकार प्राप्त लोगों के लिए किया जाए ताकि हम सभी भक्ति और पवित्रता में शांतिपूर्ण और शांत जीवन जी सकें। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर चाहते हैं कि सभी मनुष्यों का उद्धार हो और उन्हें सत्य का ज्ञान हो, क्योंकि परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ है, वह मनुष्य मसीह यीशु है जिसने सब मनुष्यों की छुड़ौती के लिए अपने आप को दे दिया और गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष क्रोध या विवाद के बिना प्रार्थना में पवित्र हाथ उठाएं। संकलक की टिप्पणी, पवित्र हाथ वे हाथ हैं जो दाग रहित और पाप से निष्कलंक, दुष्टता से मुक्त हैं। थायर के ग्रीक लेक्सिकन के अनुसार टिप्पणी समाप्त करें। मैं यह भी चाहता हूं कि महिलाएं शालीनता और शालीनता के साथ शालीनता और शालीनता से कपड़े पहनें, न कि गूंथे हुए बालों या सोने या मोती या महंगे कपड़ों के साथ, बल्कि अच्छे कर्मों के साथ जो उन महिलाओं के लिए उपयुक्त है जो भगवान की पूजा करने का दावा करती हैं। संकलक की टिप्पणी, ग्रीक रोमन संस्कृति में एक महिला के बाल उसके शरीर का एक बहुत ही कामुक क्षेत्र थे। गूंथे हुए बाल और सोने या मोती या महंगी पोशाक से सजे होने से उसकी संपत्ति और कामुकता पर ध्यान जाता है और उन महिलाओं के लिए यह उचित नहीं है जो ईश्वर भक्ति का दावा करती हैं। टिप्पणी समाप्त करें। एक महिला को शांति और पूर्ण समर्पण से सीखना चाहिए। मैं किसी स्त्री को शिक्षा देने या किसी पुरुष पर अधिकार रखने की अनुमति नहीं देता, उसे चुप रहना चाहिए। क्योंकि पहले आदम का निर्माण हुआ, फिर हव्वा का। और आदम को धोखा नहीं दिया गया था, यह वह स्त्री थी जिसे धोखा दिया गया और वह पापी बन गई। लेकिन महिलाएं बच्चे पैदा करने के माध्यम से बच जाएंगी अगर वे आस्था, प्रेम और पवित्रता के साथ मर्यादा में बनी रहें। संकलक की टिप्पणी, एक महिला की शिक्षा एक अधिकार संपन्न व्यक्ति के रूप में व्याख्यान देना नहीं है, बल्कि नम्र, सौम्य और एक दूसरे को प्राथमिकता देना है, विशेष रूप से अपने पति और चर्च के नेताओं के प्रति सम्मान दिखाना है। बगीचे में शैतान के आगे झुकने में उसकी अग्रणी भूमिका के कारण उसे अपने पति पर हावी होने का प्रयास नहीं करना है। टिप्पणी समाप्त करें। मंडली के नेता, यदि कोई पर्यवेक्षक बनने का मन करता है जो निगरानी करते हैं, प्रहरी, अभिभावक, चरवाहे, बुजुर्ग भी, तो वह एक महान कार्य की इच्छा रखता है। अब निरीक्षक को निंदा से परे, एक ही पत्नी का पति संयमी, आत्मसंयमी, आदरणीय, मेहमानवास, शिक्षा देने में सक्षम, नशे में धुत नहीं, हिंसक नहीं बल्कि सौम्य, झगड़ालू नहीं, धन का प्रेमी नहीं होना चाहिए। उसे अपने परिवार का अच्छे से प्रबंधन करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उसके बच्चे उचित सम्मान के साथ उसकी आज्ञा माने। यदि कोई नहीं जानता कि अपने परिवार का प्रबंधन कैसे किया जाए, तो वह भगवान के चर्च की देखभाल कैसे कर सकता है? उसे हाल ही में धर्मांतरित नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह घमंडी हो सकता है और शैतान के समान दंड के अधीन आ सकता है। बाहरी लोगों के बीच भी उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए ताकि वह बदनाम न हो और शैतान के जाल में न फंसे। संकलक की टिप्पणी, कई लोग महान कार्य का अनुवाद कार्य के रूप में करते हैं जो अधिक सटीक प्रतीत होता है, क्योंकि ग्रीक शब्द एर्गो है जिसका अर्थ एक कार्य, कार्य या कार्य है, न कि कोई कार्यालय या पद। टिप्पणी समाप्त करें। संकलक की टिप्पणी, चौकीदार या पर्यवेक्षक बनने की इच्छा रखने वालों के चरित्र को उनके संभावित अर्थ के बारे में संकलक की राय के साथ टाइटस के चरित्र के साथ समूहीकृत किया जाता है। परमेश्वर ने निम्नलिखित यूनानी शब्दों का उपयोग करके निर्दिष्ट किया कि वह किस प्रकार के चरवाहे, प्रहरी, पहरेदार, पर्यवेक्षक चाहता है। ये अंग्रेजी शब्द ग्रीक शब्दों से हैं। पोइमेन, आध्यात्मिक पोषण प्रदान करने वाला चरवाहा और खतरों से बचाने वाला। एपिस्कोपीस, एक अभिभावक, प्रहरी, प्रहरी वह जो आने वाले खतरे के प्रति सचेत करता है, देखरेख या निगरानी करता है। प्रेसबुटेरोस, वृद्ध आध्यात्मिक पुरुषों को दर्शाने वाला एक विशेषण। टिप्पणी समाप्त करें। ये पुरुष हैं। संदेश को दृढ़ता से पकड़े। संकलनकर्ता की समझ मसीह के प्रति वफादार रहना और उसे और उसके प्रेरितों की शिक्षाओं को जानना है। दोषारोपण से परे। संकलक की समझ निंदा के योग्य नहीं है। अच्छी प्रतिष्ठा, दोषरहित। कंपाइलर की समझ बाहरी लोगों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा है। एक पत्नी का पति। संकलक की समझ बहुविवाहवादी नहीं है। संयमी, शांतचित्त। संकलक की समझ अच्छे निर्णय का उपयोग करती है। स्वनियंत्रित, अनुशासित। संकलक की समझ कोई ढीली तोप नहीं है। आदरणीय, संकलक की समझ है। व्यवस्थित, अच्छा व्यवहार। मेहमान नवाज। संकलनकर्ता की समझ यह है कि वह दूसरों की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। सिखाने में सक्षम। संप्रेषण में संकलक की समझ सशक्त होती है। नशे को नहीं दिया जाता। संकलनकर्ता की समझ यह है कि अधिक शराब न पिएं, कोई विवाद न करें। हड़ताली या हिंसक नहीं। संकलनकर्ता की समझ जुझारू या त्वरित स्वभाव वाली नहीं है। कोमल। संकलक की समझ दयालु और दूसरों का ख्याल रखने वाली है। झगड़ालू नहीं। संकलनकर्ता की समझ विवादास्पद या बहस करने वाली नहीं है। लालची नहीं। संकलक की समझ यह है कि वह भौतिक चीजों को पहले नहीं रखता है। अपना परिवार संभालें। संकलक की समझ यह है कि परिवार आय के भीतर रहता है, खर्चीला नहीं। हाल ही में परिवर्तित न हुआ हो संकलनकर्ता की समझ एक ईसाई के रूप में परीक्षणों का सामना करने की आवश्यकता है। बच्चे जंगली और अवज्ञाकारी होने के आरोप के प्रति खुले नहीं हैं। संकलनकर्ता की समझ यह है कि बच्चे विद्रोही नहीं होते, चाहे वे ईसाई हों या ईसाई न हों। जो बुजुर्ग चर्च के मामलों को अच्छी तरह से निर्देशित करते हैं, वे दोहरे सम्मान के योग्य हैं, खासकर वे जिनका काम उपदेश देना और पढ़ाना है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, जब बैल अनाज बांट रहा हो तो उसका मुंह न दबाओ, और मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, किसी बुजुर्ग के विरुद्ध किसी आरोप पर तब तक विचार न करें जब तक कि वह दो या तीन गवाहों द्वारा न लाया गया हो। जो पाप करते हैं उन्हें सबके सामने डांटना चाहिए ताकि दूसरे लोग सचेत हो जाएं। इन सेवकों को आदर के योग्य होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अधिक शराब नहीं पीना चाहिए, बेईमान लाभ का पीछा नहीं करना चाहिए, स्पष्ट विवेक के साथ विश्वास की गहरी सच्चाइयों को पकड़कर रखना चाहिए, परीक्षण किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं। उसी प्रकार उनकी पत्नियां भी आदर के योग्य हों, द्वेषपूर्ण बातें करने वाली न हों, परंतु संयमी और हर बात में विश्वास योग्य हों। संकलक की टिप्पणी, महिला के लिए ग्रीक शब्द का गलत अनुवाद पत्नियों के रूप में किया गया था। टिप्पणी समाप्त करें। एक उपयाजक को एक ही पत्नी का पति होना चाहिए और उसे अपने बच्चों और अपने घर का अच्छे से प्रबंधन करना चाहिए। जिन लोगों ने अच्छी तरह से सेवा की है वे मसीह यीशु में अपने विश्वास में एक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा और महान आश्वासन प्राप्त करते हैं। संकलक की टिप्पणी, ग्रीक शब्द डायकोनोस का अनुवाद डीकन के रूप में किया गया है जिसका अंग्रेजी में अर्थ नौकर और लैटिन में मंत्री है। यह लिंगतस्थ है और इसका अर्थ है वह जो दूसरे के आदेशों का पालन करता है, कामकाज चलाने वाला, परिचारक, सहायक, चाहे वह पुरुष हो या महिला। थायर ग्रीक लेक्सिकन से। टिप्पणी समाप्त करें। कंपाइलर की टिप्पणी, नए टेस्टामेंट में डायकोनोस या इसके वेरिएंट का 28 बार उपयोग किया गया है, जिनमें से एक में फोबे, एक महिला नौकर, जिसका कोई संकेत नहीं है कि वह ऊपर पहचानी गई आवश्यकताओं को पूरा करती है, को संदर्भित करता है, और दो बार फिलिप्पियों 1:1 में एक डीकन के रूप में उपयोग किया जाता है। टिप्पणी समाप्त करें। टिप्पणी, डायकोनोस नौकर का काम करने वाले नौकर हैं। यह कोई कार्यालय या पद नहीं है। डायकोनोस के कार्य को परिभाषित करने का सबसे सरल तरीका नौकर के अर्थ से है। इसलिए प्रत्येक ईसाई एक डायकोनोस है। जिन लोगों में ये निर्दिष्ट चरित्र लक्षण होते हैं, जिन्हें अक्सर योग्यता कहा जाता है, वे मंडली पर नजर रखने वालों की सहायता करते प्रतीत होते हैं। हालांकि मुझे आशा है कि मैं जल्द ही आपके पास आऊंगा, मैं आपको ये निर्देश इसलिए लिख रहा हूं ताकि अगर मुझे देर हो जाए तो आप जान सकें कि लोगों को भगवान के घर में कैसे आचरण करना चाहिए, जो कि जीवित भगवान का चर्च स्तंभ और नींव है। सच्चाई का सभी सवालों से परे ईश्वरत्व का रहस्य महान है, वह शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा द्वारा प्रमाणित किया गया, स्वर्गदूतों द्वारा देखा गया, राष्ट्रों के बीच प्रचार किया गया, दुनिया में उस पर विश्वास किया गया, महिमा में उठाया गया। मसीह का परित्याग। आत्मा स्पष्ट रूप से कहती है कि बाद के समय में कुछ लोग विश्वास को त्याग देंगे और भ्रामक आत्माओं और राक्षसों द्वारा सिखाई गई चीजों का पालन करेंगे। ऐसी शिक्षाएं पाखंडी झूठ बोलने वालों के माध्यम से आती हैं, जिनका विवेक मानो गर्म लोहे से दाग दिया गया हो। वे लोगों को शादी करने से रोकते हैं और उन्हें कुछ खाद्य पदार्थों से दूर रहने का आदेश देते हैं, जिन्हें भगवान ने उन लोगों द्वारा धन्यवाद के साथ ग्रहण करने के लिए बनाया है जो विश्वास करते हैं और जो सच्चाई जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है वह अच्छा है, और यदि धन्यवाद के साथ ग्रहण किया जाए तो कुछ भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा पवित्र किया गया है। सामान्य तौर पर नौकर, बूढ़े आदमी को कठोरता से मत डांटो, उसे ऐसे समझाओ मानो वह तुम्हारा पिता हो। 1 तीमुथियुस 5:1। छोटे पुरुषों को भाई के समान, बड़ी महिलाओं को माता के समान और छोटी महिलाओं को बहनों के समान पूर्ण पवित्रता के साथ समझो। ईश्वरविहीन मिथकों और पुरानी पत्नियों की कहानियों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अपने आप को ईश्वरीय होने के लिए प्रशिक्षित करें। शारीरिक प्रशिक्षण का कुछ मूल्य है, लेकिन ईश्वरीयता का सभी चीजों के लिए मूल्य है, जो वर्तमान जीवन और आने वाले जीवन दोनों के लिए वादा करता है। अपनी आशा जीवित परमेश्वर पर रखो, जो सभी मनुष्यों का और विशेषकर उन लोगों का जो विश्वास करते हैं उद्धार करता है। सख्ती से आरोप लगाओ और इन चीजों को सिखाओ। अपनी युवावस्था के कारण किसी को अपने ऊपर तुच्छ दृष्टि से न देखने दें, बल्कि वाणी में, जीवन में, प्रेम में, विश्वास में और पवित्रता में विश्वास रखने वालों के लिए एक आदर्श स्थापित करें। जब तक मैं न आऊं, अपने आप को पवित्र शास्त्र के सार्वजनिक पाठन, उपदेश और शिक्षण में समर्पित कर दो। अपने उपहार की उपेक्षा मत करो, जो तुम्हें भविष्य सूचक संदेश के द्वारा तब दिया गया था जब प्राचीनों के समूह ने तुम पर हाथ रखा था। इन मामलों में परिश्रमी बनो, अपने आप को पूरी तरह से उन्हें सौंप दो, ताकि हर कोई तुम्हारी प्रगति देख सके। अपने जीवन और सिद्धांत को करीब से देखें, उन पर कायम रहो, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने आप को और अपने सुनने वालों दोनों को बचाओगे। परमेश्वर, मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों की दृष्टि में मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि इन निर्देशों का बिना किसी पक्षपात के पालन करो और पक्षपात के कारण कुछ भी न करो। अपने आप को शुद्ध रखो, हाथ रखने में उतावली न करना और दूसरों के पापों में भागी न होना। कुछ मनुष्यों के पाप स्पष्ट हैं, जो उनके सामने न्याय के स्थान तक पहुंच रहे हैं, दूसरों के पाप उनके पीछे पीछे छूट जाते हैं। उसी प्रकार अच्छे कर्म भी स्पष्ट होते हैं, और जो नहीं होते उन्हें भी छिपाया नहीं जा सकता। विधवाएं, यदि किसी विधवा के बच्चे या पोते पोतियां हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने परिवार की देखभाल करके और इस प्रकार अपने माता पिता और दादा दादी को चुकाकर अपने धर्म का अनुवाद पूजा या सम्मान के रूप में किया जा सकता है को व्यवहार में लाना सीखना चाहिए। वह विधवा जो वास्तव में जरूरतमंद है और बिल्कुल अकेली रह गई है, उसकी जरूरतों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, वह भगवान पर अपनी आशा रखती है और रात दिन प्रार्थना करती रहती है और भगवान से मदद मांगती है। एक विधवा जो सुख के लिए जीती है, वह जीवित रहते हुए भी मर जाती है, ये विधवाएं स्पष्ट रूप से भगवान पर अपनी आशा नहीं रखती हैं। यदि कोई अपने रिश्तेदारों और विशेष रूप से अपने निकटतम परिवार के लिए प्रदान नहीं करता है तो उसने विश्वास से इनकार कर दिया है और एक अविश्वासी से भी बदतर है। किसी भी विधवा को विधवाओं की सूची में तब तक नहीं डाला जा सकता जब तक कि वह 60 वर्ष से अधिक की न हो, अपने पति के प्रति वफादार न हो और अपने अच्छे कार्यों के लिए जानी जाती हो, जैसे कि बच्चों का पालन पोषण करना, आतिथ्य सत्कार करना, संतों के पैर धोना, उनकी मदद करना, मुसीबत में और सभी प्रकार के अच्छे कार्यों के लिए खुद को समर्पित करना। जहां तक कम उम्र की विधवाओं का सवाल है, उन्हें ऐसी सूची में न रखें, क्योंकि जब उनकी कामुक इच्छाएं मसीह के प्रति उनके समर्पण पर हावी हो जाती हैं तो वे विवाह करना चाहते हैं। इस प्रकार वे स्वयं पर निर्णय लाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली प्रतिज्ञा तोड़ दी है। इसके अलावा उन्हें बेकार रहने और घर घर घूमने की आदत हो जाती है, और वे न केवल आलसी बन जाते हैं वरन गपशप और व्यस्त काम भी करते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं युवा विधवाओं को सलाह देता हूं कि वे शादी करें, बच्चे पैदा करें, अपना घर संभालें और दुश्मन को बदनामी का मौका न दें। वास्तव में कुछ लोग पहले ही शैतान का अनुसरण करने से विमुख हो चुके हैं। यदि किसी आस्तिक महिला के परिवार में विधवाएं हैं तो उसे उनकी मदद करनी चाहिए और चर्च पर उनका बोझ नहीं पड़ने देना चाहिए, ताकि चर्च उन विधवाओं की मदद कर सके जो वास्तव में जरूरतमंद हैं। काम गुलामी और रोजगार। जो लोग गुलामी के बंधन में हैं, उन्हें अपने स्वामी को पूरे सम्मान के योग्य समझना चाहिए, ताकि भगवान के नाम और हमारी शिक्षा की बदनामी न हो। जिनके स्वामी विश्वासी हैं, उन्हें उनका आदर कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे भाई हैं। इसके बजाय उन्हें उनकी और भी बेहतर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग उनकी सेवा से लाभान्वित होते हैं वे आस्तिक हैं और उनके प्रिय हैं। ये वो चीजें हैं जो तुम्हें सिखानी हैं और उन पर जोर देना है। संकलक की टिप्पणी, जीवन में आपकी स्थिति चाहे जो भी हो, आपको ईश्वर की महिमा करने के लिए जीना चाहिए। कर्मचारियों को वह काम अवश्य करना चाहिए जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है, और फिर उससे भी अधिक अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए। टिप्पणी समाप्त करें। भौतिकवाद। यदि कोई झूठी शिक्षा सिखाता है और हमारे प्रभु यीशु मसीह की सच्ची शिक्षा और ईश्वरीय शिक्षा से सहमत नहीं होता है तो वह अभिमानी है और कुछ नहीं समझता। उसे विवादों और शब्दों के झगड़ों में अस्वस्थ रुचि है, जिसके परिणामस्वरूप ईर्ष्या, कलह, दुर्भावनापूर्ण बातें, बुरे संदेह और भ्रष्ट दिमाग वाले लोगों के बीच निरंतर घर्षण होता है, जो सच्चाई से वंचित हो गए हैं और जो सोचते हैं कि भक्ति वित्तीय लाभ का एक साधन है। संकलक की टिप्पणी, जीवन के हर क्षेत्र में बेईमान लोग होते हैं। इसलिए सभी ईसाइयों को झूठी शिक्षाओं का खंडन करने और ऐसे शिक्षक को बेनकाब करने के लिए भगवान के वचन को जानने के लिए व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन और वफादार और विश्वसनीय साथी ईसाइयों के साथ चर्चा से सच्चाई की तलाश करने की आवश्यकता है। टिप्पणी समाप्त करें। पर संतुष्टि के साथ धर्मनिष्ठा बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि हम संसार में कुछ भी नहीं लाए और हम इससे कुछ ले नहीं सकते। परंतु यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र हो तो हम उसी में संतुष्ट रहेंगे। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं वे प्रलोभन और जाल में और बहुत सी मूर्खतापूर्ण और हानिकारक इच्छाओं में फंस जाते हैं, जो मनुष्यों को बर्बादी और विनाश में डुबो देती हैं। क्योंकि धन का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कुछ लोग धन के लालच में विश्वास से भटक गए हैं और उन्होंने अपने आप को अनेक दुखों से छलनी कर लिया है। इन सब से दूर भागो और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का अनुसरण करो। विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो। उस अनंत जीवन को थाम लो जिसके लिए तुम्हें तब बुलाया गया था जब तुमने कई गवाहों की उपस्थिति में अपना अच्छा अंगीकार किया था। परमेश्वर की दृष्टि में, जो सब कुछ को जीवन देता है, और मसीह यीशु की दृष्टि में, जिसने पोंटियस पिलातुस के सामने गवाही देते हुए अच्छा अंगीकार किया, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आदेश को बिना किसी दोष या दोष के पालन करो, जो परमेश्वर है अपने समय में ईश्वर, धन्य और एकमात्र शासक, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, जो अकेले अमर हैं और जो अगम्य प्रकाश में रहते हैं, को सामने लाएंगे, जिन्हें किसी ने नहीं देखा है या देख नहीं सकता है। उसका आदर और पराक्रम सदैव बना रहे। इस वर्तमान संसार में जो धनवान हैं, उन्हें आदेश दें कि वे अहंकारी न हों और न ही धन में आशा रखें, जो बहुत अनिश्चित है, बल्कि अपनी आशा ईश्वर पर रखें, जो हमें हमारे आनंद के लिए सब कुछ बहुतायत से प्रदान करता है। उन्हें अच्छा करने, अच्छे कर्मों से समृद्ध होने, उदार होने और साझा करने के लिए तैयार रहने की आज्ञा दें। इस तरह वे आने वाले युग के लिए एक मजबूत नींव के रूप में अपने लिए खजाना इकट्ठा करेंगे ताकि वे उस जीवन को पकड़ सकें जो वास्तव में जीवन है। जो कुछ तुम्हें सौंपा गया है उसकी रक्षा करो। ईश्वर विहीन बकबक और जिसे गलत तरीके से ज्ञान कहा जाता है उसके विरोधी विचारों से दूर हो जाओ, जिसे कुछ लोगों ने दावा किया है और ऐसा करते हुए वे विश्वास से भटक गए हैं। एक तीमुथियुस के मुख्य बिंदु। कुछ ईसाइयों ने अपना जहाज बर्बाद कर दिया है और अपना विश्वास त्याग दिया है, शैतान ने जीत हासिल कर ली है। किसी का बाहरी रूप वासनापूर्ण इच्छाओं का आह्वान नहीं करना चाहिए। ईसाइयों को यह जानना होगा कि उनके चरवाहे, अभिभावक, प्रहरी किस प्रकार का आध्यात्मिक जीवन जीते हैं ताकि वे अनुसरण करने के लिए तैयार रहें, उनकी आवाज को पहचानें। सभी ईसाई सेवक हैं जिनके कार्य ऐसे हैं जो ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। चरवाहों को अपने साथ इकट्ठा होने वाले सभी ईसाइयों को मसीह और उनकी शिक्षाओं के ज्ञान से लैस करना है ताकि वे झूठी शिक्षाओं का सामना कर सकें।